नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो के द्वारा हम सब तक पहुंच रहे ओशो के सेलिब्रेशन में हम सबका हार्दिक स्वागत।
Sing a song full of life, love and joy. We dance with the sun, we dance with the rain, we embrace the earth and the sky. Osho, we sing and celebrate. Osho, we dance and sing. Osho, we celebrate. Seasons go, yet this love still remains. We trust the moment, we trust in life, accepting all that it brings. Osho, we sing and celebrate. Osho, we dance and sing. Osho, we celebrate.
आज के एपिसोड में डिस्कोर्स पद घुंघरू बांध वॉल्यूम नंबर 4 से लिया गया है, जिसमें ओशो हमें मीरा के मुक्ति मार्ग, जिसमें सगुण नाव से मीरा निर्गुण के तट पर पहुंचती है, इसकी व्याख्या करते हुए हम सब सीकर्स को अनेक इशारे दे रहे हैं।
Shana Nina Shana नाम मेरु चौथा प्रश्न। कई संत महात्मा कहते हैं कि क्योंकि मीराबाई कृष्ण के सगुण रूप से बंधी रही, इसलिए वह मुक्ति और परम पद को उपलब्ध न हो सकी। इन संत महात्माओं को कुछ भी पता नहीं। ये संत महात्मा निर्गुण शब्द से बंधे। कम से कम मीरा तो सगुण कृष्ण से बंधी थी, कम से कम जीवंत कृष्ण। ये तुम्हारे तथाकथित संत महात्मा सिर्फ निर्गुण शब्द से बंधे। इनकी अड़चन यही है कि शब्दों का जाल इन्हें फैला रखा है कि निर्गुण से मुक्ति होगी, सगुण से कैसे होगी। लेकिन सगुण में भी परमात्मा है और निर्गुण में भी परमात्मा है, वे उसके ही रूप है। आकार में भी वही है, निराकार में भी वही। अगर आकार में भी वही है तो आकार से मुक्ति क्यों नहीं होगी? परमात्मा मुक्तिदायी है। तुम कहीं से भी प्रवेश करो, मुक्ति होगी। किस द्वार से प्रवेश करोगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संत महात्माओं को तो आंखें नहीं है देखने की, मीरा को नहीं देखेंगे। ये मीरा में जो बरस रहा है अमृत, ये बिना मुक्ति के बरस ही नहीं सकता है। ये जो मीरा के घुंघरुओं की झनकार है, ये परम आनंद के बिना हो ही नहीं सकती। और इन संत महात्माओं में तुम कोई भी झनकार ना पाओगे। जरा गौर से देखना, जो संत महात्मा ऐसा कहता हो कि मीरा परम पद को नहीं पहुंची, पहले जरा इसकी तरफ देख लेना। ये सज्जन किस पद तक पहुंचे, जरा इनको हिला डुला के देख लेना, ठोंक बजा के देख लेना। आदमी दो पैसे की हंडी भी बाजार से खरीदता तो ठोंक के खरीदता है, इतने जल्दी मत खरीद लेना, ठीक से ठोंक बजा के देख लेना। और तुम बड़े हैरान होगे कि परम पद की तो दूर बात, इन्हें सुगंध भी नहीं मिली उस फूल की। मगर बड़ी आसान है ये बात कह देना कि किसको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। निर्णायक बनने में बड़ा मजा है, क्योंकि निर्णायक बनने में ऐसा लगता है कि हम ऊपर हो गए। जिसमें थोड़ा भी संतत्व पैदा हुआ होगा, पहले तो वो इस तरह का निर्णायक नहीं बनेगा, वो थोड़ा झिझकेगा। मीरा जैसे व्यक्तित्व पर वक्तव्य देने के लिए थोड़ा झिझकेगा, थोड़ा संकोच करेगा, इतनी निर्लज्जता नहीं करेगा। और यही संत महात्मा कहते फिरते हैं कि सब रूपों में वही है, सब आकारों में वही है, कण कण में वही है। जब वही है पत्ते पत्ते में, तो फिर पत्ते से भी मुक्ति हो सकती है। गोपाल की तो बात छोड़ो, अगर वही है तो कहीं से भी पकड़ लो उसका हाथ, वहीं से मुक्ति हो सकती है। सितारों के जहां तक आ गए, गुब्बारे कारवां तक आ गए, तलाशे आस्ताने यार में हम, जमी से आसमां तक आ गए। मकाम अपना मुअन्नन है न मंजिल, कहें क्या हम कहां तक आ गए। फलक की वुसअतों से गुजरकर हदूदे लामका तक आ गए। ये माना हमने वाइज और मोमन सभी बागे जना तक आ गए हैं, मगर ऐसे भी हैं गुमगस्ता कुछ लोग जो रब्बे दो जहां तक आ गए। ये माना हमने वायज और मोमन, सभी बागे जना तक आ गए, ये माना कि पंडित पुरोहित साधु तथाकथित सज्जन संत वे स्वर्ग तक आ गए हैं, ये माना हमने, उन्होंने पुण्य के सुख को पा लिया है, ये माना हमने। लेकिन मगर ऐसे भी हैं गुमगस्ता कुछ लोग, मगर कुछ ऐसे भूले हुए लोग भी हैं, भटके हुए लोग भी हैं, जो रब्बे दो जहां तक आ गए, जो कि दोनों जहान का जो परमात्मा उस तक आ गए। ऐसे कुछ भूले हुए लोग भी हैं, उन्हीं भूले हुए लोगों का नाम प्रेमी। ऐसे कुछ आसिक भी हैं, समझदार पहुंचते हैं स्वर्ग से आगे तक नहीं। स्वर्ग यानी सुख, समझदार ज्यादा से ज्यादा सुख तक पहुंचता है, ना समझ दुख में पड़ जाता है, समझदार सुख तक पहुंच जाता है। लेकिन एक और भी समझदारी है जो समझदारी से भी पार है, इसलिए उसको कहा गुमगस्ता कुछ लोग, कुछ भूले भटके लोग, जिनको समझदार भी नहीं कह सकते, ना समझ भी नहीं कह सकते, इतने भूले भटके लोग, ऐसे पागल दीवाने, ऐसे कुछ लोग हैं जो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। परमात्मा यानी सच्चिदानंद, इस फर्क को समझो। दुख का अर्थ है तुमने जीवन को बड़ी मूढ़ता से जिया, दुख का अंतिम रूप नरक। सुख तो तुम पाना चाहते थे, लेकिन तुम इतनी मूढ़ता से जिए कि सुख कभी हो ना पाया। सुख यानी स्वर्ग, अंततः जो स्वर्ग बन जाए। सुख का अर्थ होता है बड़ी बुद्धिमत्ता से जिए, ऐसी बुद्धिमत्ता से जिए कि दुख जहां था वहां से बचाया, सुख जहां था वहां अपने को सरकाया, जीवन की शैली ऐसी बनाई, जीवन को ऐसा ढंग और सांचा दिया कि सुख ही सुख हुआ। लेकिन इन दोनों की स्थितियां एक दूसरे से बंधी, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। नरक और स्वर्ग दूर दूर नहीं है जैसा आमतौर से तुम सोचते हो कि स्वर्ग ऊपर और नरक नीचे, स्वर्ग और नरक पड़ोसी और बीच में दरवाजा है दोनों के, आना जाना जारी रहता है। पुराने शास्त्र भी कहते हैं कि स्वर्ग जो जाता है जब उसका पुण्य चुक जाता है तो फिर वापस दुनिया में गिर जाता है। सुख कमा लिया था वो चुक गया, तुमने 10-5 दिन मेहनत की, 10-25 रुपए कमा लिए, फिर चले गए पहाड़ पर, 1-2-4 दिन आराम कर लिया, वो चुक गए, फिर वापस। सुख चुक जाता है, और जहां तक सुख है वहां तक दुख की छाया बनी ही रहेगी, और जहां तक दुख है वहां तक सुख की आशा भी बनी रहेगी। इन दोनों के पार हो जाने की जो अवस्था है उसको हम आनंद कहते हैं। आनंद का अर्थ सुख नहीं होता, खूब समझ लेना। भाषा कोश में कुछ भी लिखा हो, भाषा कोश से मुझे कुछ लेना देना नहीं। जीवन के कोश में आनंद का अर्थ सुख नहीं होता, आनंद का अर्थ होता सुख दुख दोनों के पार। परमात्मा को पाने का अर्थ होता आनंद को पा लिया, परम शांति को पा लिया। अब न दुख बचा न सुख बचा, न पाप बचा न पुण्य बचा, गए सब द्वंद, गए सब द्वैत, गई दुई, अब एक बचा। ये माना हमने वाइज और मोमन, सभी बागे जना तक आ गए हैं, मगर ऐसे भी हैं गुमगस्ता कुछ लोग जो रब्बे दो जहां तक आ गए हैं। उन भूले भटकों में मीरा बड़ी अप्रतिम है, उन थोड़े से भूले भटके लोगों में एक है, जिसने ना पुण्य साधा, जिसने ना विधि विधान किए, जिसने ना योगासन साधे, ना तंत्र मंत्र यंत्र जपा, जिसने इस सब की चिंता ही नहीं की, जो औपचारिकताओं में उलझी ही नहीं, जिसने प्यारे को याद किया बस इतना ही काफी, जिसने अपने गिरधर को पुकारा, जिसने इतना ही कहा कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे, जिसने बस एक ही रटन, पागल थी दीवानी थी, खुद भी मानती है कि दीवानी है, बार बार कहती मेरा भाई दीवानी। ये जो गुमगस्ता लोग हैं, ये तुम संत महात्माओं से इनकी मत पूछना। संत महात्माओं का महात्माओं को इनका पता भी क्या। इनकी पूछना हो तो गुमगस्ता लोगों से पूछना, इनकी पूछना हो तो दीवानों से पूछना। ये दीवाने कुछ ऐसे रास्तों से जाते हैं जो राजपथ नहीं है। एक तो आदमी होता है जो सामने के दरवाजे से आता, घंटी बजाता, अपना विजिटिंग कार्ड भेजता, पहले से फोन करके समय लेता। और एक आदमी चोर की तरह रात में आता है खिड़की छलांग। ये गुमगस्ता लोग ऐसे जो परमात्मा में कहीं से भी छलांग लगा जाते। ये ना कोई खबर देते पहले से कि हम आते हैं, ना कोई समय मांगते, ना ये कहते कि हमारी कोई पात्रता है, ना दावा करते। ये तो बस चले जाते। ये तो कहते हैं हमें तेरी करुणा का भरोसा है, और कोई भरोसा नहीं। फर्क समझ लेना। वो संत महात्मा दावा करता है कि मैंने इतना तप किया है, इतना जप किया है, इतनी पूजा है, इतना पाठ, इतना सब लेके आ रहा हूं, कमाई अपनी, सब खाते बही मैंने तैयार रखे, तुम देख लो, मैं हकदार हूं। संत महात्मा दावेदार होता, भक्त दावेदार नहीं होता। भक्त कहता मेरे पास क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं, तूने जो जीवन दिया था वो भी लौटा दिया व्यर्थता में, तूने जो संपत्ति दी थी वो भी गमा दी, सब तरह के पाप कर लिए हैं, सब तरह की भूलें कर ली हैं, मगर मुझे भरोसा है तो तेरी इस बात का है कि तू रहमान है, रहीम है, तू करुणावान है। बस मुझे भरोसा है तो इस बात का कि मेरे पाप कितने ही हो, तेरी क्षमा मेरे पापों से बड़ी है। बस भक्त का इतना भरोसा है। इसलिए स्वभावतः अगर तुम किसी जैन मुनि से जाके पूछो कि मीरा पहुंची मोक्ष, तो कहेगा कहां की बातें कर रहे हो, इसने उपवास कितने किए, पहले उपवास का तो पक्का करो। याद ही नहीं मीरा ने कभी उपवास किया हो, कहीं उल्लेख नहीं। मीरा उपवास करे भी क्यों, ना तो मीरा कोई सत्याग्रही, ना मीरा कोई मुरारजी भाई देसाई है कि उसको कोई उपवास करे कि ये करे कि वो करे कि किसी तरह घुसो कि कहीं सत्ता में पहुंच जाओ। मीरा को किसी का मन बदलने की भी कोई जरूरत नहीं कि सत्याग्रह करो, कि अनशन करो, कि जबरदस्ती करो दूसरे पर, क्योंकि ये उपवास तो सब जबरदस्तियां हैं। गांधी जी ने उपवास को बड़ा हिंसा का उपाय बना दिया। जिसको भी हिंसा करनी उपवास करो। उपवास का मतलब ये कि दूसरे से जबरदस्ती करवा लेंगे। जबरदस्ती यानी हिंसा। समझाने बुझाने की बात ठीक है, लेकिन आप किसी के सामने छाती पर छुरा लेके खड़े हो गए कि हम अपनी छाती में छुरा मान लेंगे अगर हमारी न मानोगे, अब ये भी कोई बात हुई? इसको अहिंसा कहते हो कि हम छुरा मार लेंगे अगर हमारी बात न मानी? मतलब बात हमारी माननी ही पड़ेगी, नहीं तो हम छुरा मारते। अब उस आदमी में अगर थोड़ी भी दया ममता हो या थोड़ा भी सज्जन ताद हो गया, भाई ठहरो, इतनी सी बात के लिए ऐसा मत करो। डॉक्टर अंबेडकर हरिजनों को हिंदुओं से निकाल लेना चाहते थे, गांधी ने अनशन कर दिया इसी पूना में, और कहा कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगा आमरण अनशन। अब ये कोई दलील हुई, ये कोई तर्क हुआ? इसको तर्क कहते, इसको दलील कहते? ये तो सज्जनता भी नहीं है। और अगर अंबेडकर राजी हो गए देख के कि गांधी मर जाएंगे, तो मैं मानता हूं अंबेडकर के मन में कहीं ज्यादा करुणा है बजाय गांधी की। नहीं तो क्या जरूरत थी राजी होने की? अंबेडकर कहते कि ठीक है मरना है तो मरो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बात तुम्हारे मरने से सही सिद्ध नहीं होती। वैसे तुम्हारी मर्जी, किसी को आत्महत्या करनी हो तो करे। पर अंबेडकर सोचा कि इस आदमी का मरना देश के लिए महंगा होगा और मेरी जिद के कारण कोई मरे, यद्यपि मेरी बात सही है, अंबेडकर की बात बिल्कुल सही है, हरिजनों को हिंदुओं के साथ रहने का कोई कारण नहीं, उन्हें कभी का अलग हो जाना चाहिए था, सिवाय अपमान और सिवाय दुर्दशा के वहां कुछ भी नहीं है। अंबेडकर बिल्कुल ठीक कह रहा था। और हिंदुओं को अगर कभी कोई बुद्धि आएगी तो तभी आएगी जब सारे हरिजन एक दफा इकट्ठे होकर अलग हो जाएं, तो ही इनको कुछ बुद्धि आ सकती, नहीं तो बुद्धि आ भी नहीं सकती। अभी भी हरिजन जलाए जा रहे हैं, अब भी मारे जा रहे हैं। दलील तो अंबेडकर की ही ठीक थी, तर्कयुक्त थी, विचारपूर्ण थी, लेकिन गांधी जिद्दी। मगर लगता ऐसा है कि गांधी कोई अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। यह अहिंसात्मक नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हिंसा है। तो ना तो मीरा कोई सत्याग्रही थी, अनशन क्यों करे। और जैन मुनि है, उसका जो अनशन है, उसका जो उपवास है, वो भी अपने को कष्ट देने की व्यवस्था है। मान्यता यह है कि जितना तुम अपने को कष्ट दोगे उतने पुण्यात्मा हो जाते। ये संतत्व नहीं है, ये केवल रुग्ण दशा है। अपने को कष्ट देना रोगी चित्त का लक्षण है। मनोवैज्ञानिक उसको खास नाम देते हैं, वो कहते हैं मैसोचिज्म। पश्चिम में एक आदमी हुआ मैसोच, वो अपने को मारता था कोड़ों से, कांटे चुभो लेता था अपने शरीर में। उसने कई औजार बना रखे थे, जैसे डॉक्टर एक बक्सा रखता नहीं, ऐसा वो अपना बक्सा अपने पास रखता जिसमें कई तरह के औजार थे खुद को सताने के लिए। खीले कान में डाल लेगा, छेद कर लेगा। वो मैसोच उसका नाम था, उसके नाम पर मैसोचिज्म मनोवैज्ञानिकों ने बना लिया। ऐसे लोग हैं जो अपने को सताने में मजा लेते। अब ये जैन मुनि भूखा मर रहा है। दिगंबर जैन मुनि होते हैं जो अपना बाल नोचते, बाल कटवा नहीं सकते, लोचते उखाड़ते, और जब जैन मुनि बाल उखाड़ता तो बड़ा जलसा होता, केस लॉन्च हो रही, सारे भक्त जन इकट्ठे होते हैं, कहते हैं आहा, अब ये पागलपन का लक्षण है। पागलों में एक खास किस्म का पागलपन होता है जिसमें लोग अपने बाल लोचते। तुमको भी पता होगा, तुम्हारी पत्नी कभी कभी लोचने लगती बाल, वो कोई बड़ी शांति की अवस्था नहीं है, वो सिर्फ क्रोध है, वो जीवन में एक तरह के विषाद हताशा का लक्षण है। मगर उसको गुण माना जाता है। तो निश्चित ही अगर तुम दिगंबर से जाकर पूछोगे, वो पूछेगा मीरा ने कितनी दफा केस लॉन्च किया, बिल्कुल नहीं किया, तो फिर कैसे मोक्ष जाएगी। उपवास कितने किए, बिल्कुल नहीं किए, तो कैसे मोक्ष जाएगी। उपवास मीरा करे क्यों, केस लॉन्चे क्यों, कारण क्या है। ये तो रोग के लक्षण है, ये कोई साधनाएं नहीं है, ये कहीं ना कहीं मन में कोई विकृति है। दूसरों को चोट करने में जैसी हिंसा है, वैसे ही अपने को चोट करने में भी हिंसा है। और ध्यान रखना, दूसरों को चोट करने में तो एक सुविधा है कि दूसरा अपनी रक्षा भी कर सकता है, जवाब भी दे सकता है। खुद को चोट करने में तो तुमने बिल्कुल ही हालत खराब कर ली, अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई रक्षा करने वाला भी नहीं। दुनिया में दो तरह के हिंसक लोग हैं, एक वे जो दूसरों की हिंसा करते हैं, वे इतने खतरनाक नहीं क्योंकि दूसरे भी तो हैं, वो अपनी रक्षा कर लेंगे, कानून है, पुलिस है, अदालत है, हजार उपाय हैं सुरक्षा के। दूसरे वे लोग जो अपनी हिंसा करते, इनके साथ कोई उपाय नहीं, ना अदालत इनको दंड देती। अगर मेरा चले तो जो आदमी अपनी हिंसा करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इस शरीर का अपमान कर रहा है। ये देह परमात्मा की उतनी ही है जितनी कोई और देह। अगर मैं तुम्हें चांटा मारूं तो अदालत में मुकदमा चल सकता है, खुद को चांटा मार लूं तो कोई अदालत मुझ पर मुकदमा नहीं चला सकती। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये देह को भी उतना ही दर्द होता है जितनी तुम्हारी देह को होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि देह मेरी है कि तुम्हारी है। जैन शास्त्रों में तो आत्महत्या की भी व्यवस्था है। जैन मुनि चाहे तो आमरण अनशन करके मर जाए, मर सकता, उसकी आज्ञा है। निश्चित ही ऐसे लोग कहेंगे ये मीरा कहां से पहुंचेगी। फिर जैनों ने तो कृष्ण को तक नरक में डाला है, मीरा को तो कैसे पहुंचने देंगे परमपद। कृष्ण को नरक में डाले हुए हैं, जिनकी ये पूजा कर रही उनकी पूजा करके तो ये महानरक में जाएगी, इनके गुरु ही नरक में डले हुए। कृष्ण को नरक में डालना पड़ा है उन्हें, क्योंकि जैन साधुता के हिसाब से कृष्ण साधु नहीं ठहरते। ये कैसे साधु, मोर मुकुट बांधे खड़े, सुंदर वस्त्र पहने रेशम के, हाथ में बांसुरी ली है, और इतना ही नहीं, इतना ही करो अकेले रहो तो भी ठीक है, गोपियां नाच रही पास, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। तो कृष्ण को नरक में डाला है। तुम तो कहते हो मीरा को परम पद नहीं मिला, मीरा को तो मिलेगा कैसे, उनके गोपाल भी नरक में पड़े, उन्हीं के साथ वो भी पड़ी होगी। नहीं, ये दृष्टियां गलत हैं, ये दृष्टियां भ्रांत हैं। अभी तक धर्म ने जीवन की स्वस्थता को ठीक ठीक अंगीकार नहीं किया। जीवन स्वस्थ होना चाहिए, संगीतपूर्ण होना चाहिए, सहज होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। साधना का अर्थ होना चाहिए अहंकार का विसर्जन, ना कि आत्मदमन। साधना का अर्थ होना चाहिए प्रभु के चरणों में समर्पण, जहां बिठाए बैठे, जहां उठाए उठे, अपना कर्ता भाव खो जाए, बस यही परम पद है। पूछा है तुमने, कई संत महात्मा कहते हैं क्योंकि मीराबाई कृष्ण के सगुण रूप से बंधी रही इसलिए वे मुक्ति और परम पद को उपलब्ध न हो सकी। न तो वे कहने वाले संत हैं और न महात्मा हैं। निर्गुण की तो बात, उन्हें अभी सगुण का भी कुछ पता नहीं है। निर्गुण की तो बात ही छोड़ दो, निर्गुण को तो आगे का कदम है, वो तो सगुण की ही पराकाष्ठा है, इनमें कुछ विरोध थोड़ी है। सगुण तो ऐसे है जैसे तुमने एक नाव पे बैठे और उस पार गए, निर्गुण ऐसे है कि उस पार नाव छोड़ दी और उतर के चल पड़े। निर्गुण सगुण के आगे का कदम है, वो सहज है। मगर जो आदमी डर रहा है सगुण से, वो इसी पार अटका रह जाएगा। तुम्हारे महात्मा इत्यादि इसी पार बैठे धुनी रमाए हुए, मीरा उस पार गई, उसने सगुण की नाव बना ली, मगर उस पार जाके तो फिर नाव भी छूट जाती है, कोई नाव में ही थोड़ी बैठे रहना। जब तक गोपाल से दूर थी तब तक गोपाल के लिए रोई, जब तक गोपाल से दूर थी गोपाल को पुकारा, जब तक गोपाल से दूर थी नाची गुनगुनाई। ये तो नाव है, ये नाम स्मरण तो नाव है, फिर जब गोपाल में प्रविष्ट हो गई फिर कैसी पुकार, फिर तो दुई ना रही तो पुकारेगा कौन किसको, फिर तो कैसा रूप। ये तो अभी कहती है कि नैनन बसो मेरे नंदलाल, ये तो अभी, क्योंकि दूरी है, इस पार है और प्रभु उस पार, और बड़ी दूरी है, तो पुकारती है कि मेरी आंखों में बस जाओ, मेरे हृदय में रम जाओ, मुझे संभालो, मुझे पकड़ लो, मेरे हाथ को हाथ में ले लो। ये तो अभी इस किनारे की बातें, जैसे ही करीब आने लगेगी वैसे वैसे ये बातें छूटती जाएंगी। जिस दिन हृदय में प्रविष्ट हो जाएगी, जिस दिन दो ज्योतियां मिलके एक हो जाएंगी, फिर कौन किसको पुकारेगा। फिर जब पुकार न रही तो सगुण न रहा, निर्गुण अपने आप से फलित होता है। निर्गुण का फल सगुण के ही बीज से लगता है, इनमें भेद नहीं है। जिन्होंने भेद किया वो कोरे पंडित थे, दो कौड़ी की उनकी बातें। ये जामो सबूदे उठा मेरे साकी, अब आंखों से अपनी पिला मेरे साकी, पिलाता चला जा जो पीना खता है, तो होती रहे ये खता मेरे साकी, मेरी तस्नगी फैज तक तेरे पहुंचे, बढ़ा और उसको बढ़ा मेरे साकी, बकाए हयाते खिरस से बचा ले, मुझे बख्श कैफे फना मेरे साकी, यही आरजू खत में सद आरजू है, मुझे ऐसा बेखुद बना मेरे साकी, यही मेरी मंजिल यही मेरा हासिल, तू कदमों में दे दे मुझको जा मेरे साकी। मीरा की भी यही पुकार है, भक्त की यही पुकार है सदा से। ये जामो सबूदे उठा मेरे साकी, भक्त कहता है कि क्या प्यालों में भर भर के मुझे दे रहा है, ऐसी भी क्या कंजूसी। ये जामो सबूदे उठा मेरे साकी, अब आंखों से अपनी पिला मेरे साकी। जो मीरा कहती है, मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, आन बसो नंदलाल मेरे नैनों में मेरी आंखों में। वो तुम्हारी जो बड़ी बड़ी आंखें वो मेरी आंखों में झुकाओ। अब आंखों से अपनी पिला मेरे साकी, पिलाता चला जा जो पीना खता है। और अगर कोई कहता होगी ये पीना जुर्म है, अपराध है, पाप है, तो होती रहे ये खता मेरे साकी, भक्त कहता तो फिर मुझे फिक्र नहीं। होती रहे ये खता मेरे साकी, मेरी तस्नगी फैज तक तेरे पहुंचे। बढ़ा और उसको बढ़ा मेरे साकी, और मेरी प्यास को ऐसा बढ़ा कि मैं तेरे पूरे सागर को पीने में समर्थ हो सकूं। बकाए हयाते खिरस से बचा ले, ये प्यारा वचन है, ख्याल रखना। बकाए हयाते खिरस से बचा ले, मुझे बुद्धि से बचा ले हे परमात्मा। मुझे बख्श कैफे फना मेरे साकी, मुझे समर्पित हो सकूं, तुझ में लीन हो सकूं, तल्लीन हो सकूं, ऐसा आशीष दे। बकाए हयाते खिरस से बचा ले, मुझे बख्श कैफे फना मेरे साकी। यही आरजू खत में सद आरजू है, मुझे ऐसा बेखुद बना मेरे साकी। भक्त यही मांगता है कि मुझे बेखुद बना दे, मुझसे मेरा पन ले ले, मेरा अहंकार छीन ले, मुझ में मैं भाव न रह जाए। यही मेरी मंजिल, यही मेरा हासिल, एक ही मेरी मंजिल है और एक ही मेरी आकांक्षा है। तू कदमों में दे दे मुझको जा मेरे साकी, तेरे कदमों में मुझे जगह मिल जाए, तेरे चरणों में जगह मिल जाए। लेकिन चरणों में जगह मिलना तो बस नाव की ही बात है। अभी जैसे ही चरणों में जगह मिली, जैसे ही दिए इतने करीब आए, ज्योतियां एक हो जाती। जिसने चरण पकड़े परमात्मा के, जल्दी ही उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाता। कहीं से पकड़ो उसे, चरण से पकड़ो, मगर पकड़ो उससे जुड़े कि एक हुए। उससे जुड़े तो दो नहीं रह सकते। परमपद भक्त उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है, वो तो कहता तेरे चरणों में पड़ा रहूं, मगर इन्हीं चरणों में पड़ने के कारण पहुंच जाता है, परमपद उपलब्ध हो जाता है। प्रेम मुक्ति है, भक्ति मोक्ष है। और जो प्रेम रहित हैं और निर्गुण की बकवास में लगे हैं और निराकार की बातें कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना। जिन्होंने भी सगुण को भी नहीं जाना, वो निर्गुण को क्या खाक जानेंगे। जो अभी आकार को नहीं पहचान सके, वो निराकार को कैसे पहचानेंगे। पहले आंखों को आकार को पहचानने के योग्य बनाओ, फिर निराकार भी आता है, क्योंकि निराकार आकार के पीछे ही छिपा है।
चरण के लगे लगना लगे लगना लगे 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 लगना गुरु चरण लागे लगन गुरु चरण के चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठ माया सब सपनन के, झूठ माया सब सपनन के, मोर लागे लगन गुरु चरणन के, मोर लागे लगन गुरु चरणन के। सागर सब सुख गया, भव सागर सब सुख गया है, फिकर नहीं मोह तरनन के, फिकर नहीं मोह तरनन के, मोर लागे लगन गुरु चरणन के, मेरा कह प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मेरा कह प्रभु गिरधर नागर, उलट भाई मोर नयनन के, उलट भाई मोर नयनन के, मोर लागे लगन गुरु चरणन के, मोर लागे लगन गुरु चरणन के। चरणन के मोर लागे लगन गुरु चरणन के, चरणन के, चरणन के, मोर लागे लगन गुरु चरणन के, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठ माया सब सपनन के, झूठ माया सब सपनन के, लागे लगन गुरु चरणन के, लागे लगन गुरु चरणन के, लागे लगन गुरु चरणन के, मोर लागे गुरु चरणन के।
ओशो अपने एक प्रवचन में कहते हैं, मेरे आश्रम में हजार मीराएं और हजार बुद्ध उपलब्ध होंगे। और आज ओशो के ये हजार मीरा और हजार बुद्ध सगुण इस संसार में उपलब्ध हैं। तो दुनिया में हो रहे अनेक ध्यान महोत्सव शिविरों का लाभ जरूर उठाएं। इसके साथ ही हम ओशो रेडियो के आज के एपिसोड की समाप्ति की ओर हैं। आज के एपिसोड में हमने ओशो संगीत, प्रेम काय, देवा प्रेमल, संदीप एंड चिन्मय, मिलर रेपा और प्रेम जोशुआ की एल्बम से लिया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
Spreading like sunshine over my face, assure your blessings, fill me with grace. I feel your love from my head to my toes. Whenever I see you, it grows and it grows. You put a song in my life. 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 Spreading like sunshine over my face, assure your blessings fill me with
पिलाता चला जा जो पीना खता है।